अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल पर किस करते हुए कहा, हमने तो आपको इतना मिस किया है कि हम क्या बताएं। अभिमन्यु इप्सिता के साथ वही नंदिनी की मॉम के घर में रुका और समायथ और अर्पिता भी तब तक अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। वो सब इप्सिता के चर्चे हर तरफ से सुन रहे थे। नंदिनी का नाम उदयपुर में भी उतना ही होने लगा जितना मुंबई में था। उदय ने अपनी डैड की कंपनी में इतनी मेहनत की कि उनकी कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट होने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद इप्सिता अभिमन्यु के साथ जब वापस महल आई और वो अपने रूम में गई तो उसने बेड पर बैठकर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, हमने अपने रूम को बहुत मिस किया था। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, और हमने आपको कितना मिस किया आपको हम बता भी नहीं सकते। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता की गर्दन पर किस करने लगा। इप्सिता ने भी अभिमन्यु को नहीं रोका क्योंकि इतने दिनों बाद वो दोनों एक साथ अपने रूम में थे और वो दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आना चाहते थे। थोड़ी ही देर में वो लोग एक दूसरे में गुम हो गए। अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुली तो इप्सिता काफी ज्यादा खुश लग रही थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इप्सिता ने जैसे ही ये बात कही अभिमन्यु ने उसके गाल पर बड़े प्यार से किस करते हुए कहा, बिल्कुल अब सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होगा और जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के नजदीक आने लगा इप्सिता को किस करने के लिए। वो उसकी गर्दन के पास झुका और बड़े प्यार से इप्सिता की गर्दन को चूम लिया। इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो दोनों अपने इस मॉर्निंग रोमांस में खो गए। तभी अचानक से इप्सिता का फोन बजा। जैसे ही फोन बजने की आवाज हुई तो इप्सिता ने मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसमें नंदिनी का कॉल आ रहा था। नंदिनी का नंबर देखकर इप्सिता ने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, नंदिनी हमें इतनी सुबह कॉल क्यों कर रही हैं? इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो नंदिनी क्या हुआ, तुम हमें इतनी सुबह सुबह कॉल कर रही हो, सब ठीक है ना? नंदिनी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि कल उदय का बर्थडे है। जैसे ही इप्सिता ने बात सुनी वो उठकर बैठ गई और उसने कहा, अरे हाँ कल तो भाई का बर्थडे है। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनी और उसकी तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगा। तभी नंदिनी ने कहा, हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है, एक्चुअली कल मैं मम्मी और पापा के साथ मिलकर उदय को बर्थडे सरप्राइज देने वाली हूँ। उदय को अपना बर्थडे याद है या नहीं मुझे बात नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें पहले से प्लीज बर्थडे विश मत करना। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही इप्सिता ने हैरानी से कहा, मतलब? नंदिनी ने कहा, देखो हम उदय को बर्थडे सरप्राइज देने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम सब यहाँ पर अचानक से आकर हमारे साथ मिलकर उन्हें सरप्राइज दो, इसीलिए तुम अभिमन्यु जीजू को भी मना कर देना और मासा और अभिमन्यु के साथ घर पर आ जाना, इसी बहाने हम सब एक साथ मिलेंगे एक दूसरे से। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके फाइन। नंदिनी ने इतना बोलकर कॉल कट करने के लिए फोन अपना साइड में रखने ही वाली थी, तभी उसने कहा, हे ईशु 1 मिनट मेरी बात सुन। नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता ने फोन वापस अपने कान में लगाते हुए कहा, बोलो क्या हुआ? नंदिनी ने कहा, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अर्पिता और समर्थ जी को भी उदय की बर्थडे पार्टी में बुला लें। इप्सिता ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, तुम उन्हें भी कॉल करके बुला लेना। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल कट किया। उसने पूरी बात अभिमन्यु को बता दी। अभिमन्यु ने कहा, फिर तो आज हमें शॉपिंग पर चलना चाहिए है ना, उदय के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो तो फिर फटाफट रेडी हो जाइए आप, जब तक हम जाकर मासा से ये बात बता देते हैं। इप्सिता चुपचाप रेडी होने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल गए। अगले दिन उदय काफी ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि शादी के बाद उसका ये पहला बर्थडे है, नंदिनी उसे सबसे पहले विश करेगी। उदय ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा नंदिनी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर निकली और वो सीधे शीशे के सामने आकर रेडी होने लगी। उदय उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अभी नंदिनी उसे विश करेगी, बट नंदिनी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। तभी उदय उठा और नंदिनी के बिल्कुल करीब आया। उसने नंदिनी को बैक हग किया और नंदिनी के गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। वो नंदिनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बात है उदय, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उदय ने कहा, आज आपको पता है ना क्या है? जैसे ही उदय ने बात सुनी नंदिनी मन ही मन मुस्कुराने लगी क्योंकि वो जानती थी कि उदय उसे अपनी बर्थडे विश के बारे में बात कर रहा है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ हम जानते हैं, आज तो सैटरडे है ना। उदय ने जैसे ही नंदिनी की ये बात सुनी उदय का मुंह बन गया। उसने धीरे से हामी भरी और वो चुपचाप रूम से बाहर निकल आया। नंदिनी उसे इस तरह जाते देखकर अपने मन में बोली, सॉरी माय लव, आपको थोड़ा परेशान कर रही हूँ, बट सरप्राइज देने के लिए थोड़ा परेशान करना तो बनता है। इतना बोलकर उसने उदय के पीछे पीछे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, वैसे मम्मी जी मैं सोच रही थी कि आज मैं आपके साथ शॉपिंग पर चलूं क्या? आज सैटरडे है तो हमारा वीकेंड अच्छा हो जाएगा। उदय नंदिनी की ये बात सुनकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा, कोई भी उसे विश नहीं कर रहा था। उदय ने मायूस होते हुए अपने मन में कहा, किसी को हमारा बर्थडे नहीं याद, सब बस यूं ही हमसे बोलते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन देखो किसी ने भी अभी तक हमें विश नहीं किया। इतना बोलकर उदय उदास हो गया और उसने ब्रेकफास्ट आधा प्लेट में ही छोड़ दिया और उठकर खड़े होते हुए बोला, डैड हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। नंदिनी ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने तुरंत हैंड वेव करते हुए कहा, ओके बाय। उदय ने नंदिनी की तरफ देखा और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया। जैसे ही उदय बाहर निकला नंदिनी ने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, उदय शायद थोड़े से अपसेट हो गए हैं। उदय की मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, जब शाम को वो सरप्राइज देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, सभी लोग उदय की बर्थडे की तैयारी में लग गए। सारे घर के नौकर घर को सजाने में जुट गए। नंदिनी ने फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ ठीक है आप जल्दी आ जाइए। तभी नंदिनी के पास आकर उदय की मम्मी ने कहा, केक का ऑर्डर दे दिया है ना आपने नंदिनी बेटा? नंदिनी ने कहा, हाँ मम्मी मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नंदिनी ये बात बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे से नंदिनी की मॉम की आवाज आई, मैं अपने जमाई के लिए अपने हाथों से केक बनाकर लाई हूँ। जैसे ही नंदिनी ने अपनी मम्मी को देखा वो खुश हो गई और भागते हुए अपनी मम्मी के पास गई और बोली, वाह मम्मी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नंदिनी की मॉम ने कहा, अब मेरे जमाई का बर्थडे है तो आना तो था ही। नंदिनी की मम्मी को देखकर उदय की मम्मी काफी ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने कहा, चलिए अच्छा हुआ आप आ गई, थोड़ी हमें भी कंपनी मिल जाएगी।
थोड़ी ही देर में इप्सिता और अभिमन्यु अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच गए थे। सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं और शाम का समय हो गया था। थोड़ी ही देर में समर्थ और अर्पिता भी वहाँ आ गए थे। सब कुछ अच्छी तरह से तैयार था और सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। इप्सिता वहीं नंदिनी के साथ खड़ी थी। उसने कहा, सच में कितने दिनों बाद मिल रहे ना हम लोग। तभी अर्पिता वहाँ आई। अर्पिता की तरफ देखकर नंदिनी ने कहा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी अर्पिता जी, आपके चेहरे की चमक साफ बता रही है कि आप समर्थ जी के साथ कितनी खुश हैं। नंदिनी की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराने लगी और समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ वहीं अभिमन्यु के साथ खड़ा था और सभी औरतें उदय के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नौकर भागते हुए आया और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, भाभी सा छोटा मालिक आ रहे हैं। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी उसने कहा, सब लोग लाइट स्विच ऑफ कर दो। सभी नौकरों ने तुरंत नंदिनी की बात मानी और सारी लाइट्स ऑफ कर दी। उधर जब उदय अंदर आया तो उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा था। इतना अंधेरा देखकर उदय धीमी आवाज में बोला, ये इतना अंधेरा क्यों है? फिर वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, कोई है? सब लोग कहाँ चले गए? उसने अपने घर के नौकरों को आवाज लगाई लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। तभी एक फॉक्स लाइट सीधे उदय के ऊपर पड़ी और वो वहीं रुक गया। तभी नंदिनी की आवाज आई, मिस्टर उदय सूर्यवंशी, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपको इस तरह से सरप्राइज देने का मौका मिल रहा है। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप मिले, और इस बात के लिए मैं भगवान का जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। नंदिनी की आवाज सुनकर उदय वहीं पर रुक गया और उसे देखने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, नंदिनी आप कहाँ हैं? तभी नंदिनी ने लाइट्स ऑन करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नंदिनी अपने हाथ में एक छोटा सा केक लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर उदय के सामने आकर खड़ी हो गई। उदय ने जैसे ही नंदिनी का चेहरा देखा उसने नंदिनी के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ओह मैं भूल गया था कि आज हमारा बर्थडे है। उदय को नहीं पता था कि वहाँ और भी सारे लोग मौजूद हैं। नंदिनी ने उदय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बस सिर हिलाया। उदय ने नंदिनी के दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूम लिया। तभी नंदिनी ने कहा, लाइट्स ऑन कर दो। सारी लाइट्स ऑन हो गई और सब लोग ताली बजाने लगे। उदय ने जब वहाँ मौजूद इतने सारे लोगों को देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया। सब लोग उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। उदय की नज़र इप्सिता, अभिमन्यु और नंदिनी की माँ पर पड़ी और उसने देखा कि वहाँ समर्थ, अर्पिता और बाकी सभी लोग मौजूद थे। सभी बहुत खुश लग रहे थे। उदय उन सबको देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। तभी नंदिनी ने उदय को गले लगाया और उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे माई लव। उदय ने नंदिनी को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नंदिनी ने उदय के आंसुओं को पोंछा और उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने ले आई। उदय के मम्मी पापा ने उसे विश किया और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी इप्सिता ने उदय को गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे भाई, और फिर निकिता ने भी उसे गले लगा लिया। तभी नंदिनी ने कहा, चलो केक काटिए। उदय केक काटने लगा और उसने सबको केक खिलाया। सभी लोग काफी खुश थे। तभी समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतना अच्छा खुशी का मौका है, शायद हमें भी अपनी खुशी सबके साथ बांटनी चाहिए। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी थोड़ी सी घबरा गई। समर्थ की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तभी अर्पिता ने कहा, समर्थ, और समर्थ ने उदय और वहाँ खड़े बाकी सभी लोगों की तरफ देखा और उसने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु जब यहाँ पर इतना खुशी का माहौल है तो हम भी अपनी एक खुशी आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही अर्पिता ने कसकर समर्थ का हाथ पकड़ लिया। सभी लोग बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। समर्थ ने अपनी माता की तरफ देखा और कहा, हम आप सबके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, अर्पिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और शर्माने लगी। जैसे ही इप्सिता और नंदिनी ने ये बात सुनी, दोनों भागते हुए अर्पिता के पास आई। इप्सिता ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, सच में अर्पिता? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता ने कसकर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस। समर्थ अभिमन्यु के गले लग गए और अभिमन्यु ने उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, वाह क्या गुड न्यूज दी है। उदय भी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने भी समर्थ को कंग्रेचुलेशंस किया। सभी लोग खुशी से झूम उठे। तभी इप्सिता ने कहा, अरे वाह, आज तो हमें एक साथ दो दो खुशखबरियां मिल गई। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। सभी लोग खुश हो गए थे। वहीं माँ अर्पिता की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी अर्पिता की नजर मास पर गई। माता की आंखों में आंसू भरे थे। अर्पिता धीरे धीरे मास की तरफ बढ़ी। माता ने अर्पिता के दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगी। तभी अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, माता हमने आपसे झूठ बोला था, हम बंद नहीं हैं। माता ने अर्पिता के मुंह से ये बात सुनते ही कसकर उसे अपने गले लगा लिया। उन्होंने उसकी तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, हमें माफ कर दो अर्पिता, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अर्पिता ने माता को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, नहीं माता साहब, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो हमारी माता हैं और हम जानते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं। जैसे ही माता ने अर्पिता को गले लगाया, अभिमन्यु उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। नंदिनी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, चलो फाइनली हमारी लाइफ ट्रैक पर आ गई है, अब एक ग्रैंड फैमिली पिक्चर हो जाए। इतना कहकर नंदिनी ने तुरंत सामने खड़े एक नौकर को अपना मोबाइल फोन देते हुए कहा, भैया हमारी पूरी फैमिली की पिक क्लिक करिए। उसने कैमरा उसे पकड़ा दिया और सब लोग एक साथ खड़े हो गए। माता अर्पिता को गले लगाए हुए थी और उन्होंने समर्थ को भी अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। सभी एक साथ मिलकर खड़े हुए। अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखा। सब बहुत खुश लग रहे थे और पूरी फैमिली की पिक क्लिक हो गई। सभी खुशी खुशी उदय का बर्थडे और समर्थ और अर्पिता की प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने लगे। सबने एक साथ डिनर किया और अपने अपने घर वापस लौट आए। इप्सिता बहुत खुश नजर आ रही थी। वो महल की छत पर खड़ी आसमान में निकले फूल मून को देख रही थी। तभी अभिमन्यु पीछे से आया और उसने इप्सिता को पीछे से हग करते हुए कहा, क्या हुआ इप्सिता? इप्सिता ने कहा, हम आज बहुत खुश हैं, हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल पर किस करते हुए कहा, और हम भी, सच में आज अर्पिता कितनी खुश लग रही थी ना। अर्पिता ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ सच में हम अर्पिता के ये बहुत खुश हैं, अब फाइनली आप मामा बनेंगे और हम मामी। अभिमन्यु इप्सिता की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने इप्सिता को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, बस अब आप यहीं पर चांद देखती रहेंगी क्या? इतना कहकर अभिमन्यु ने इप्सिता को अपनी गोद में उठाया और उसे सीधे अपने कमरे में लेकर आया। उसने इप्सिता को आराम से बेड पर लिटाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी इप्सिता ने अभिमन्यु के चेहरे पर हाथ रखा। अभिमन्यु ने इप्सिता के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस किया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अभिमन्यु ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी।